निर्गमन अध्याय 6। निर्गमन की पुस्तक के अध्याय 5 में हमने देखा था कि मूसा अत्यधिक निराश है। उसने वही किया जो वो सोचता था कि परमेश्वर ने उसे करने के लिए बुलाया था। वो फिरौन के पास गया और इसराइल की संतान को छोड़ देने की मांग की, परंतु उन्हें रिहा कर देने की अपेक्षा फिरौन ने उनका बोझ और बढ़ा दिया और उनके दासत्व को और अधिक कठिन बना दिया। जब इसराइलियों पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े तो वे मूसा पर बरस पड़े, तूने हमें हमारी दशा में ही क्यों नहीं छोड़ दिया? तेरे आने के पहले तक हम पर इतना भारी जुलम तो नहीं ढाए जा रहे थे? जब से तू मिस्र में आया है हमारा जीवन बहुत कठिन हो गया है। हम तो यही चाहते हैं कि तू हमें भाग्य के भरोसे छोड़ दे। तब मूसा चिंतित हो उठा और अपनी शिकायत लेकर यहोवा के पास गया। हे परमेश्वर, तू मुझसे क्या कराना चाहता था? तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? तूने तो उन्हें छुड़ाया नहीं, वरन उनकी स्थिति तो बहुत खराब हो गई। ये एक रोचक बात है कि बहुत बार हम ये सोचकर कार्य करने निकल पड़ते हैं कि ये हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा है, परंतु सब बातें ठीक उस प्रकार से कार्य नहीं करती जैसे कि हमने सोचा था, बल्कि कभी कभी तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है और हम अपनी बुलाहट पर प्रश्न उठाने लगते हैं। परमेश्वर, क्या आपने वास्तव में मुझे इस कार्य के लिए बुलाया है? यदि तूने मुझे इस कार्य के लिए बुलाया है, ये सब अस्त व्यस्त कैसे हो गया? मूसा तो सबसे पहले ही नहीं चाहता था कि फिरौन के पास जाए। उसने कहा, हे प्रभु, कृपा करके किसी और को भेज दे। प्रभु मूसा से रुष्ट हो गया था। तब प्रभु ने जो कुछ कहा मूसा ने ठीक वही किया, परंतु ऐसा लग रहा था कि जैसा उसने आशा और अपेक्षा की थी वैसे कुछ नहीं हुआ। मेरा ये विश्वास है कि जब हम प्रभु की सेवा में प्रवेश करते हैं तब शैतान निश्चय ही हमारे विश्वास के समर्पण को चुनौती देता है। शैतान हमारी सेवकाई के आरंभ में हमें निरुत्साह करने के यथासंभव प्रयास करता है। वो परमेश्वर की बुलाहट के प्रति मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उत्पन्न करता है। वो आपके जीवन में परमेश्वर के कार्य को चुनौती देता है, विशेष करके तब जब आपकी सेवकाई आत्मा के वरदानों से संबंधित हो। आत्मा के वरदानों को काम में लेने के समय शैतान को चुनौती देना बहुत अच्छा लगता है। उदाहरण, भविष्यवाणी का वरदान। पौलुस ने कहा, जिसका भविष्यवाणी का दान मिला हो वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे, रोमियो 12:6। बहुत बार जब आप विश्वास द्वारा कदम बढ़ाते हैं और परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं तब लोग आपको चुनौती देते हैं और आपके मन में प्रश्न उठता है, क्या ये वास्तव में परमेश्वर था जो मुझसे बातें कर रहा था? मूसा भी चुनौती के ऐसे ही स्थान पर था। इसराइलियों ने उसे और उसकी सेवकाई को चुनौती दी तथा मूसा ने पलटकर परमेश्वर से प्रश्न किया, तूने मुझे क्यों भेजा? स्थिति तो सुधारने की अपेक्षा बिगड़ती ही जा रही है। अतः अध्याय 6 के आरंभ में इस परेशान नबी के लिए परमेश्वर का उत्तर निहित है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा जिससे वह उनको बरबस निकालेगा। वो तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। निर्गमन 6:1। मूसा, तूने तो अभी कुछ नहीं देखा है, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन के साथ क्या करूंगा, क्योंकि उसने कठोरता दिखाई है। वो उन्हें जाने ही नहीं देगा, वरन उन्हें खदेड़ कर बाहर निकालेगा। जब वे जाने लगे तब वो उन्हें देख प्रसन्न होगा कि वे जा रहे हैं। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं यहोवा हूं। निर्गमन 6:2। हम कितनी बार भूल जाते हैं कि प्रभु ही परमेश्वर है। कई बार हम सोचते हैं कि नियंत्रण हमारे हाथ में है और हमें परिस्थिति को अपने नियंत्रण में रखना है। हम लोग भूल जाते हैं कि कमान परमेश्वर के हाथ में है। हम इस प्रकार आदेश देने लगते हैं जैसे परमेश्वर कठपुतली है या रोबोट है। परमेश्वर ने उनसे कहा, रुको, मैं यहोवा हूँ, किसके हाथ में नियंत्रण है, कौन सब बातों में अगुवाई करता है, कौन सब बातों का संचालन करता है? मूसा, मैं यहोवा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर से उसका स्थान ले लेने का प्रयास करते हैं। अतः उसके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि वो हमें अपनी हस्ती का स्मरण कराए। हमारे लिए ये एक संकट बना रहता है कि हम भूल जाएं वो कौन है। इसका मुख्य कारण है कि हम में अपने आप को या मनुष्य को बड़ा बनाने की प्रवृत्ति होती है, जिसके अभिभूत हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर यहोवा है। जब हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर यहोवा है, तब हम उस श्रेणी में आ जाते हैं जिसका उल्लेख पौलुस ने रोमियो को लिखे पत्र के पहले अध्याय में किया है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, रोमियो 1:21 पर। उन्होंने अपने जीवन को अपने ही नियंत्रण में रखना आरंभ कर दिया था। वे ऐसे जीवन व्यतीत कर रहे थे जैसे परमेश्वर उनका दास हो, न कि वे परमेश्वर के दास। अतः ये अति आवश्यक है कि हमें स्मरण दिलाया जाए कि परमेश्वर ही प्रभु है, वरन वो सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञानी और महिमामय भी है। कई बार हम अपनी समस्या को देखते हैं, वे बहुत बड़ी और भारी प्रतीत होती है। अपने सामने समस्याओं के इस पहाड़ को देखता हूँ और सोचता हूँ, इस पहाड़ को कोई भी हटा नहीं सकता। मैं हतोत्साह हो जाता हूँ क्योंकि वो पहाड़ बहुत बड़ा दिखाई देता है, और मैं डर कर परमेश्वर के सन्मुख आता हूँ। प्रायः होता यह है कि हम परमेश्वर से निवेदन करना भी नहीं चाहते क्योंकि ये पहाड़ बहुत बड़ा प्रतीत होता है। इस पहाड़ को हटा देना आपके लिए निश्चय ही असंभव है। अतः आप सोचते हैं कि परमेश्वर भी इस पहाड़ को हटा देने में सक्षम ना हो। प्रभु यीशु के शिष्य उसके सामने एक बड़ी समस्या लेकर आए। उन्होंने कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। प्रेरितों 4:24। इसके पहले कि आप प्रार्थना करें, इन बातों को स्मरण रखना एक अच्छी बात है। आकाश उसके हाथ की कारीगरी है, उसने सब कुछ बनाया है। इसलिए जो पहाड़ आपके सामने है एवरेस्ट का सा ही क्यों न हो, परमेश्वर की दृष्टि में वो कुछ भी नहीं है। अगली बार जब आप सोचें कि आपके सामने जो पहाड़ है वो इतना बड़ा है कि परमेश्वर के लिए उसे हटाना मुश्किल हो, मैं आपको सलाह दूंगा, रात्रि के अंतिम पहर 3-4 बजे उठकर आकाश में सितारों को देखें, तो कुछ सितारे ऐसे हैं जो बहुत दूर होने के कारण छोटे तो दिखते हैं, परंतु वास्तव में हमारे सूर्य से बहुत बड़े हैं। मैं विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूँ, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। भजन 102:25 पद। भजन के इस पद पर मनन करते ही मेरी सब समस्याएं छोटी दिखाई लगने लगती हैं और समस्याओं का वो पहाड़ अब इतना बड़ा नहीं दिखता। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ। कितनी बार हम परेशान हो जाते हैं, तब परमेश्वर कहता है, रुक, देख, मैं यहोवा हूँ, नियंत्रण मेरे ही हाथ में है। हमें ये सदा स्मरण रखना है। कैसी शांतिदायक बात कि परमेश्वर ही यहोवा है और नियंत्रण उसके हाथ में है। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर एल शदाई के नाम से इब्राहिम, इसाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। निर्गमन 6:3। अब एक भाव में यहोवा शब्द का अर्थ है एक बनना। वास्तव में इब्राहिम ने यहोवा इरे शब्दों का उपयोग किया था जब उसके बेटे ने मोरिया पर्वत पर जाते समय पूछा था, अब्बा, बलिदान कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, यहोवा इरे, प्रभु उपाय करेगा। उत्पत्ति 22:8। परंतु तब भी प्रभु कह रहा है, अभी तक मैं अपने नाम यहोवा से जाना नहीं गया। दूसरे शब्दों में वे परमेश्वर को उस व्यक्तिगत रूप में नहीं जानते थे जिसमें मूसा जानता था। वे उसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता ही जानते थे। आप में से बहुत से उसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता के रूप में जानते हो। जब कभी मैं किसी को प्रार्थना आरंभ करते सुनता हूँ, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, मैं सोचने लगता हूँ कि उनका उसके साथ अति निकट का संबंध नहीं है। जब कोई आकर कहता है, पिताजी मैं वास्तव में संकट में हूँ, तब महसूस करता हूँ, ओह, पिता के साथ उनका कितना खुला रिश्ता है। एक बार मैं कुछ इटली वासियों के साथ प्रार्थना सभा में था। उन्होंने प्रार्थना का आरंभ इस प्रकार किया, ओह पापा। मैं एक क्षण के लिए चौंक उठा और सोचा, अरे ये तो परमेश्वर का नाम बिगाड़ रहे। मुझे बाद में पता चला कि इटली की भाषा में पापा का अर्थ होता है पिताजी। मैंने कहा, अति सुंदर, मुझे बहुत पसंद है। पापा, तेरा बच्चा परेशानी में है, मुझे सहायता की आवश्यकता है। ये उत्तम बात है कि परमेश्वर के साथ निकट एवं घनिष्ठ रिश्ता बनाया जाए, उसे यहोवा के नाम से जाना जाए, जिसका अर्थ है वो मेरे लिए मेरी आवश्यकता की पूर्ति बन जाता है। इसराइली वंशियों ने परमेश्वर की उस परिपूर्णता को, जो वो उनके लिए बन जाना चाहता था, उसे वास्तव में अपनाया नहीं था। उनके लिए परमेश्वर बहुत दूर एक बहुत बड़ी शक्तिशाली सर्वसामर्थी शक्ति सृष्टि करता था। यद्यपि वे परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानते थे, उन दोनों के बीच की दूरी ऐसी थी जैसे सीमित और असीमित के मध्य, परंतु अब परमेश्वर मनुष्य के निकट आ रहा था। उसने कहा, उन्होंने मुझे यहोवा से नहीं जाना है, तू मुझे अधिक निकट और घनिष्ठ संबंधों में जानेगा। परमेश्वर आपके साथ अधिक निकट और अति घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, इस कारण उसने अपने इकलौते पुत्र भेज दिया। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर से ऐसा घनिष्ठ संबंध बना सके जैसा पिता और पुत्र के बीच होता है, जिससे कि आप उसकी उपस्थिति में आने का साहस कर सके और आप अपनी आवश्यकता के समय उसकी दया को पा सके। कभी कभी लोग मेरे दफ्तर में मुझसे मिलने आते हैं तो मुझे हंसी आ जाती है। वे इतना अधिक घबरा जाते हैं कि वे भूल जाते हैं कि वो किस काम से आए थे। मुझे बड़ा विचित्र सा लगता है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने मेरे जीवन के द्वारा जो किया है, लोग उसका सम्मान करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं एक बड़ा आदमी बन गया हूँ। मुझ जैसे व्यक्ति को चुनकर उसके द्वारा कोई कार्य करना परमेश्वर की महिमा है, उसका अनुग्रह और प्रेम है। इससे प्रकट होता है कि परमेश्वर कैसा महान है। तो भी कभी कभी लोग बड़े सम्मान पूर्वक कहते हैं, ओह चक, जैसे कि मानो कोई बहुत बड़ा आदमी है, जो वास्तव में है ही नहीं। आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, आप में ऐसी भावना नहीं आना चाहिए। मेरे नाती पोते तो ऐसे नहीं हैं, वे तो तूफान के समान मेरे कार्यालय में आ धमकते हैं। वे इस बात की चिंता नहीं करते कि मैं किसी के साथ परामर्श कर रहा हूँ या अन्य किसी विशेष कार्य में व्यस्त हूँ। वे आकर मेरे काम में विघ्न डाल देते हैं और कहते हैं, दादाजी मुझे आइसक्रीम चाहिए। उन्हें निश्चय ही प्राथमिकता मिलती है, क्योंकि हमारे संबंध ऐसे घनिष्ठ है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ एक स्वच्छ और मनोहर संबंध बनाएं। वो तो चाहता है कि आपके पास ऐसी स्वतंत्रता हो कि आप किसी भी समय छोटी सी छोटी बात को लेकर उसके पास आए। वो ऐसे ही संबंध बनाना चाहता है। इस कारण परमेश्वर ने भावना व्यक्त की, देख, वे मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से जानते हैं, मैंने स्वयं को उन पर प्रकट किया है। उन्होंने मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से तो जाना है, परंतु वे अभी तक उस घनिष्ठ रिश्ते को नहीं जानते जिसे मैं चाहता हूँ कि तू और मेरे लोग व्यक्तिगत अनुभव द्वारा जाने। मैं तुम्हारी चौकसी करता हूँ और तुम्हारी चिंता करता हूँ और तुम्हारे लिए मेज लगाता हूँ, और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे उसे उन्हें दे दूं। इसराइली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं उनका कराना भी सुनकर मैंने अपनी वचन को स्मरण किया है। निर्गमन 6:4-5 पर। अब सबसे पहले परमेश्वर स्वयं को मूसा के सामने प्रमाणित कर रहा है, मैंने उनके साथ अपनी वाचा स्थापित की है, मैं जानता हूँ, मैंने सुना है और मुझे अपनी वाचा स्मरण हुई है। कभी कभी विलंब के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाएं भूल गया है। बाइबल कहती है कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, अर्थात यीशु मसीह के आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई। दूसरा पत्रस 3:3-4 पर। समय में विलंब हो जाने के कारण मनुष्य ठट्टा करेंगे, परंतु प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। दूसरा पत्रस 3:9। इस कारण परमेश्वर ने कहा, तू इसराइलियों से कह कि मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया और जिस देश के देने की शपथ मैंने इब्राहिम इसाक और याकूब से खाई थी उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा, मैं तो यहोवा हूँ। निर्गमन 6:6-8 पर। इस प्रकार परमेश्वर मैं हूँ से आरंभ करता है और फिर कहता जाता है, निकालूंगा, छुड़ाऊंगा, छुड़ा लूंगा, अपना लूंगा, ठहराऊंगा, कर दूंगा और तब पुनः मैं यहोवा हूँ पर आ जाता है। प्रायः कोई भी प्रतिज्ञा उतनी ही अच्छी होती है जितना कि प्रतिज्ञा करने वाला व्यक्ति। बहुत से लोगों ने बहुत सी प्रतिज्ञाएं की है, परंतु मैं उन पर ध्यान नहीं देता। जब मैं बालक था तब एक दिन हमारे दरवाजे पर दस्तक दी गई। मेरे माता पिता ने जाकर दरवाजा खोला। जो व्यक्ति द्वार पर था उसने अपना परिचय दिया कि वो पिताजी की ओर से हमारा रिश्ते का भाई प्रिंगल था। वो अंदर आ गया। ओह चार्ल्स, ये तुम्हारा परिवार है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। उसने हम सब बच्चों को प्यार किया। उसने मुझे घूर कर देखा और कहा, बेटा सिगरेट मत पीना, यदि तुम अपनी 21 की आयु तक सिगरेट नहीं पियोगे तो मैं तुम्हें सोने की घड़ी दूंगा। मुझे लगा ये कैसी विचित्र बात कर रहा है, क्योंकि वो स्वयं सिगरेट पीता था। मैंने 21 वर्ष तो क्या आज तक कभी सिगरेट नहीं पी। उसके जाने के बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा, ना सोने की घड़ी को। मेरे कहने का अर्थ ये है कि कुछ प्रतिज्ञाएं ऐसी होती है जिन्हें आप गंभीरता से नहीं ले सकते। जब परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है और यहाँ वो ये कहता है, मैं यहोवा हूँ और मैं करूँगा। यहाँ 7 बार परमेश्वर कहता है मैं करूँगा, अर्थात वे कार्य जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए आवश्यक करेगा। इसराइल का इतिहास अपने आप में अनोखा है, जिसमें परमेश्वर की संतान दासत्व से निकालकर लाल समुद्र से होकर बपतिस्मा जंगल में परमेश्वर के साथ नए संबंध में आती है। पुराना जीवन और पुराना मनुष्यत्व की मृत्यु, तदोपरांत प्रतिज्ञा के देश में समृद्धि और परिपूर्णता का जीवन, परमेश्वर द्वारा इसराइल को दी गई इन प्रतिज्ञाओं को हम अपने जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं मानकर अपना सकते हैं। तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा, शरीर और पुराने की चाल से अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया, और जिस देश के देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। और ये बातें मूसा ने इसराइलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उसकी न सुनी। निर्गमन 6:6-9 पद, मिस्रियों द्वारा उन पर भारी बोझ लादने और क्रूरता से बेगार करवाने के कारण वे बहुत निराश हो गए थे। अतः जब मूसा इन महिमामय प्रतिज्ञाओं और घोषणाओं के साथ उनके पास आया, तब वे विश्वास न कर पाए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू जाकर मिस्र के राजा फिरौन से कह कि इसराइलियों को अपने देश में से निकल जाने दे। और मूसा ने यहोवा से कहा, देख, इसराइलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरौन मुझ बद्दे बोलने वाले, मूल में खतना रहित होठ वाले कि क्यों कर सुनेगा। निर्गमन 6:10-12 पद, मूसा ने कहा, देख, तूने इसराइलियों से बोलने के लिए कहा था, पर उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, और अब तू फिरौन के पास जाकर कहने के लिए आदेश देता है, क्या वो सुनेगा। मूसा अब भी अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट और आज्ञा के प्रति तत्परता दिखाने से पीछे हट रहा है। और यहोवा ने मूसा और हारून को इसराइलियों और मिस्र के राजा फिरौन के लिए इस अभिप्राय से आज्ञा दी कि वे इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल ले जाएं। निर्गमन 6:13 पद 14-19 में याकूब के पुत्रों की संक्षिप्त वंशावली दी गई है। लेवी के पुत्रों की वंशावली देते समय वो मूसा और हारून तक आ जाता है। अम्राम ने अपनी फूफी योकबेद को ब्याह लिया और उसे हारून और मूसा उत्पन्न हुए, और अम्राम की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। निर्गमन 6:20। अब हम सीधे पद 26 में चलते हैं। हारून और मूसा ये ही है जिनको यहोवा ने ये आज्ञा दी, इसराइलियों को दल दल करके उनके जतों के अनुसार मिस्र देश से निकाल ले आओ। ये वही मूसा और हारून है जिन्होंने मिस्र के राजा फिरौन से कहा कि हम इसराइलियों को मिस्र से निकाल ले जाएंगे। निर्गमन 6:26-27 पद, इस प्रकार हमने देखा कि मूसा और हारून को लेवी की वंशावली में बताया गया ताकि हमें उनकी पृष्ठभूमि का ज्ञान हो सके। जब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से ये बात कही, मैं यहोवा हूँ, इसलिए जो कुछ मैं तुझसे कहूंगा वो सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना, और मूसा ने यहोवा का उत्तर दिया, मैं तो बोलने में बद्दा हूँ, खतना रहित होठ वाला, और फिरौन कैसे मेरी सुनेगा। निर्गमन 6:28-30। अब ये वृत्तांत पद 12 और 13 का दोहराया जाना है। बीच में वंशावलियों को दर्शाने के बाद वो फिर से मुख्य कहानी पर आ जाता है।